अंत राय आदि से समाप्त करना है, फिर जब द्वारा अपन शुरू करेंगे तब अगला कलश और अगली गाथाएं आरंभ करेंगे, एक नया प्रकरण होगा। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या करते हैं, ये पेज नंबर 41 पर अपन को ऊपर से ही पढ़ना है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा माने कि हम सोच समझ के करें, तो ज्ञानी भी के कहां अभाव है इनका। भरत चक्रवर्ती ने जो लड़ाई लड़ी थी बिना सोचे समझे लड़ी थी, युद्ध के लिए गए थे, शादियां की थी तो बिना सोचे समझे की थी। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ है हम वही करें कि हम जैसे हम बुद्धिपूर्वक करें तो, लेकिन उन्हें बुद्धिपूर्वक का अर्थ तो अज्ञान में है, माने अज्ञानी अवस्था में बुद्धिपूर्वक माने ऐसी मान्यता पूर्वक कि मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, मैं इनका स्वामी हूं, ये अर्थ है। अज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, सम्मान ऋषि की तो बात ही कर रहे हैं, तो वही मान्यता तो है ही नहीं ना। लेकिन ये कौन सा अज्ञानमय है, जो चारित्र मोह के उदय में रहता है उन्हें भी अज्ञानमय भाव बोलते हैं। अभी कलश आएगा आगे, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी, अज्ञान त्रिविक्रम पुद्गल करे जो निश्चय प्रमाण, वो ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, है ना, आता है वो सब बातें। तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, अज्ञानमय माने जो चारित्र मोह के उदय से होने वाले, उनको अज्ञानमय नाम दिया हमने। राग द्वेष मोह का अभाव होने से, अब तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञान में तो हो तो क्या, ठीक तो है, मोह राग द्वेष माने में, मोह माने में था, तो ये अभाव होने से तो लिख रहे हैं, होने से कहां लिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ना। यदि इनका ज्ञानी के सद्भाव लिखते तो अपन समस्या खड़ी होती है। अभी आधी पंक्ति पूरी नहीं पढ़ी और अपन उसमें उलझ गए। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है, माने वो मिथ्यात्वादिक और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता है, बस निराश्रव है खत्म, उसको ही वो निराश्रव ही है। एक तो ये बात क्लियर हो गई, ख्याल में नहीं ना। अब परंतु अब तक संयोग समय ज्ञान है, देखो जब तक सर्वयोग में ज्ञान है तब तक वह ज्ञान ज्ञानी के सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता है ना जान सकता है। तो सर्वोत्कृष्ट भाव माने पूर्ण वितराग भाव से, माने केवल ज्ञान से, है ना। जब तक सर्वयोग में ज्ञान है, सीधा अर्थ होगा छाये ज्ञान जब तक नहीं हुआ, माने वो केवल ज्ञानी की बात है क्या, और ना आसन कर सकता है, किंतु जघन्य भाव से देख सकता है, जघन जान सकता है और आचरण कर सकता है। इच्छुक्षम भाव में रहना ही जघन्य भाव है, और वो चौथे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक लेना, इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है। अब अबुद्धिपूर्वक मैंने बस बुक, अब वो चारित्र मोह की बात है, माने बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, बुद्धिपूर्वक माने मिथ्यात्व भूमिका के, और अबुद्धिपूर्वक माने सम्यक भूमिका में होने वाली। अरे ऐसा सीधा सच्चा अर्थ है, तुम सोच समझ के किए कि बिना सोचे समझे किए, कि तुम्हारे ज्ञान के गे बने के नहीं बने, ऐसी कोई भेद ही नहीं डाला। हरदा जी ख्याल में ही बात ना, तुमने ये भेद डाला कि हमारी ज्ञान में आए कि नहीं आए, ना ये भेद डाला कि तुमने सोच समझ के किए कि नहीं किए। अरे भाई ज्ञानी भी लोग के काम भी जितना करता है तो ये सब बिना सोचे समझे करता है, इसका मतलब सारे काम उसके अविवेक भरे होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक माने चार मोह संबंधी राग द्वेष विद्यमान है, इससे उसके बंध भी होता है। अब वो जो बंध होता उसे बंध कह रहे, और हम क्या समझते जिस बंध का पहले निषेध किया ना अब उसी बंध को होना कहते, तो हम उसी पे घटित करेंगे ना तो सब झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अब वो बंध दूसरा है और ये बंध दूसरा है ना। देखो एक होती उद्दंडता और एक होती है उपेक्षा, अथवा अभी मैं कानूनी भाषा में बात करूं तो एक होता है फौजदारी केस और एक होते जो मैं दीवानी वगैरह। अपराध तो सब ही है, हमने किसी का पैसा ले लिया और वापस नहीं दे रहे तो अपराध ही है या नहीं है? क्यों, हमने गवर्नमेंट का टैक्स सही नहीं चुकाया तो अपराध तो है ही, लेकिन फिर भी वो फौजदारी जैसा नहीं है। सर इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें समझौता हो सकता है, फौजदारी में समझौता नहीं होता। कैसे मतलब? हमें आपने हमें 10 करोड़ रुपए दिए थे, फिर आपने हमने दिए नहीं आपको, आपने दावा कर दिया, दावा कर दिया, केस चालू हो गया। अब हमने आपस में विचार कर लिया कि वो जान गया इसके पास पैसा तो है ही नहीं, तो जो कुछ मिले ले लो आकर के निपटाओ ना। तो उसके पास मकान था 2 करोड़ का बंगला, तो उसने कहा सेठ जी ये ले लो झगड़ा निपटाओ, काय को मुकदमा लड़ने से फायदा है। वो भी समझ गया, तो उसने 10 करोड़ का दावा किया था और 2 करोड़ ले लिए, और दोनों ने लिख के अदालत को दे दिया कि हमने समझौता हो गया है। क्या हुआ, 10 करोड़ दिए कि नहीं दिए, 2 करोड़ दिए कि बिल्कुल नहीं दिए, कुछ मतलब नहीं। वे दोनों इतना लिख देवे और अदालत में जाके कह देवे तो वो केस खत्म हो जाता, क्योंकि वो ऐसा अपराध नहीं है कि जिसमें समझौता नहीं हो सके, जो माफ नहीं हो सके। ख्याल में आर्थिक अपराध जिसे बोलते हैं, अभी किसी ने किसी की हत्या करी तो उसमें वास्तव में इसमें तो 2 पार्टियां होती हैं, दोनों के वकील होते हैं, गवर्नमेंट का वकील बीच में नहीं होता है दीवानी केस में, लेकिन फौजदारी केस में एक होता है जिसके विरुद्ध आरोप लगा है वो हत्यारा, और दूसरा होता है गवर्नमेंट पार्टी जिसकी हत्या हुई है वो नहीं होता पार्टी, वो तो मर ही गया। फिर अब उसके घर वाले, अब घर वाले कितना रस लेंगे नहीं लेंगे क्या करेंगे, हो सकता हत्या करने वाले ही घर वाले हों। तो 2 पार्टी होती हैं, एक गवर्नमेंट और एक वो घर वाले, उसमें तीसरी पार्टी बन सकते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए बीच में, लेकिन वैसे नहीं है। तो वो अब गवर्नमेंट में उसने समझौता नहीं हुआ, उन्हें हत्या की है कि नहीं की है, अब अगर हमने जिसकी हत्या हुई है उसके माँ बाप से उनके भाई बहन से हमने समझौता कर लिया है तो वो पुलिस नहीं मानेगी, हत्या की तुमको सजा मिलेगी मिलेगी, उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं है। तो वास्तव में वो कहलाता है अपराध और ये कहलाता है दोष। तो मिथ्यात्व है अपराध और चारित्र का जो उदय में जो होती है वो है दोष। तो सम्यक दृष्टि अपराधी नहीं है, दोषी तो हो सकता है। तो निर्दोष तो केवल ज्ञान हो जाएगा तब बनेगा, 18 दोषों से रहित हो जाएगा ना तब उसे निर्दोष बोलते हैं। सत्तम एवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रादि रोधवाक, के अरहंत भगवान तुम ही निर्दोष हो। तो दोषी नहीं हो सकता है सम्मादृष्टि, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपराधी नहीं होता। अपराध क्या है? परद्रव्य के प्रति राग होना, ये दोष है। लेकिन वो राग मेरा है, तू मेरा ही है, कैसे तुम मेरे में तू छोड़ के मुझे जा सकता है, तुम मुझे ऐसा करना ही पड़ता। परद्रव्य में जो एकत्व महत्व है और राग में भी एकत्व महत्व है, वो अपराध है। राग होना अपराध नहीं है, संयोग होना भी अपराध नहीं है, और संयोग के प्रति राग होना भी अपराध नहीं है, और वो उस लेवल तक भी हो सकता है क्या कि तुम अपनी लड़की से मेरी शादी कर और नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आक्रमण करूंगा, तुझे गुलाम बनाऊंगा, युद्ध के मैदान में तू सामने मेरा प्रतिरोध करेगा तो मैं तुझे मार भी सकता हूं। क्या समझे ना, क्या बात कर रहे, इतनी बड़ी बात में कोई दोष कहते हैं? ऐसा ऐसा तुम मंजूर करोगे? इतनी आजादी किसी आदमी को दी जा सकती है? तो हम क्या करें, हमारे पुराण भरे हुए हैं इसमें, इस आजादी से। ये चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती की जितनी 96,000 पत्नियां होती हैं, उनके माँ बाप उनके यहां शादी करने थोड़ी आए थे? फिर जाकर के उनकी उन पर चढ़ाई करी, उन्हें हराया और फिर उनसे उनकी लड़कियां ली। और पहले तो सब जगह फिर भरे पड़े हैं, लाइन लगा के खड़े रहते थे लड़के, और एक लड़की हाथ में माला लेकर और घूमती थी और वो सुनती थी। अब वो राजा कहते थे कि नहीं, तुम्हें मेरी देना पड़ेगा, तुम जितना पढ़ो पुराणों में 90% ऐसे मिलेंगे कि उन राजाओं ने उन राजा छोटे राजाओं की लड़कियों से जबरदस्ती शादी की। ले लो, रुक्मणी का भी अपहरण हुआ था क्या? श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लाए थे और शादी कर ली। अब कुमारी सीता थी और रावण अपहरण करके ले जाता और घर में बैठा के शादी कर लेता तो रावण की पत्नी हो जाती। ऐसे ही तो हुआ ना, श्री कृष्ण ने जो किया, ऐसे एक दो केस थोड़ी है। राजा सैनिक ने भगवान महावीर की मौसी का है ना चेलना, उसका अपहरण कर लिया, जबरदस्ती शादी कर ली। वो आज तक कहां लगा के न्यायी है कि न्यायी है जो उसको कहां माना, वो तो उस ऐसे ही चलता था। अब वो सब चारित्र वही के दोष में जाता है कि नहीं? अभी क्या करें, यदि हम विचार करते हैं कभी कभी गंभीरता से तो हम आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। क्या कोई बड़े से बड़ा आदमी हम और हमारी बच्ची न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके साथ वो जबरदस्ती शादी कर सके। क्या? और वो 10-10 बच्चों का बाप, 25-25 रानियों का राजा होता था और वो 26वीं का अपहरण करता था और उससे शादी करता था। आज कर सकता कोई ऐसा? एक को तलाक के दिए बिना दूसरे से शादी करे तो जेल में जाना पड़े। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हम आज उसे कितनी अच्छी पोजीशन में हैं। आज हमको इतनी आजादी है कि नहीं है? लेकिन उस वक्त वो सब सेठ की लड़की पर राजा बीज गए, बस सेठ को ऑर्डर भेज दिया, बच्चों भी लड़की की शादी हमसे कर लो, अब तुम बुढ़े हो, तुम्हारे बेटे भी हमारी बेटी से शादी करें तो तुम्हारे पोते की शादी करें, ऐसी पोजीशन में पढ़ो तो क्या सास पढ़ के देखो। और फिर भी वो कह रहे हैं मैं खत्म, और चुपचाप उनको दे दो, नहीं तो बच्चों देश निकाला और संपत्ति अपहरण पूरा का पूरा सब जब्त। इसलिए इस दृष्टि से जिसे अपन कहते हैं भारत आजाद है, सचमुच आजाद है। अरे भाई तुम्हारे सब खाने पीने सब व्यवस्था थोड़ी कोई कर देगा, वो तो अपनी मेहनत से जुटानी ही पड़ेगी, लेकिन तुम आजादी से तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है। आज तो हमारी समस्या ये है कि कोई लड़का हमारी लड़की से आकर प्रेम करता है और हम और हमारी लड़की नहीं चाहे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़की चाहने लगती है। और ऐसे केस अपने जैन समाज में हुए ना, नागपुर तरफ बहुत हुए हैं, कि वो मुसलमान को चाहने लग गए, माँ बाप सिर पटक के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? लेकिन वो लड़की नहीं चाहे और कोई ऐसा ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्या? इसलिए क्या दोष है और क्या अपराध है, माने सम्यक दृष्टि के जीवन में जो हो सकता है वो सब दोष ही है, अपराध नहीं है। और शास्त्रों में जो सम्यक दृष्टियों का चरित्र वर्णन किया है, अब शास्त्र के हिसाब से सोचोगे तो वो मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी आज के जो लेटेस्ट कानून है बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा, लेकिन वो आज का न्याय नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये, देखो इससे उसके बंद होता है, इसलिए उसे यह उपदेश है। किसके लिए? जो सम्यक दृष्टि के लिए भी उपदेश है ना, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। देखो ज्ञान माने आत्मा, आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी पर का होता ही नहीं, पर का तो अनादिकाल से ध्यान कर ही रहे हैं। अब आजकल एक तर्क दिया जाता है प्रैक्टिस पर पे कर लो और फिर अपने को कर लेना। तो प्रैक्टिस अनादिकाल से तो हो रही है, तो शत्रु पर प्रैक्टिस करो, यानी जिससे हटाना है समस्या और जिस पर ले जाना है। अब तुम कहते उस पर ही जमाना सीखो, अरे वहां से तो उखाड़ना है भाई साहब उसे, ये नाक मेरे ध्यान में ना आए, हमारी समस्या तो ये है। अरे मेरे नाक को देखो, नाक दिखाई ना दे, हमारी समस्या तो ये है। कोई भी पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने और आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने, इसको ही ध्यान बोलते हैं ना। पर अबुद्धि पूर्वक बन जाए तो आचार्य कहते कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होता है। ठीक, बाद में दादा और बता दूं आपको मारने ध्यान ने। हम क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान के ध्यान होता है क्या? नहीं बोलो क्या नहीं होता? देखो तो लिखा है, गोमटसार में लिखा है, धबला में लिखा है, 50 प्रमाण दे देंगे सिद्ध भगवान के ध्यान नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं सिद्ध भगवान आत्मा का उपयोग आत्मा में लीन नहीं होता होगा? ठीक है ना, सकल एक या एक तदवी निजानंद रसली। वो भाई क्यों लिखा के ध्यान नहीं होता? हम तो धोखे में आ गए, वहां ध्यान ही नहीं मानते होंगे, फिर तो अपने दुनिया अपने आराम से टीवी में भी देखते रहते होंगे, आत्मा के ध्यान करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है क्यों? अरे जो ध्यान की परिभाषा हमने बनाई है समझने के लिए लोगों को, वो परिभाषा वाला ध्यान नहीं होता। जैसे कहा ना, कौन सा? उत्तम सहननी से काग्य चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूतात्। अब अंतर्मूतात वो तो अनंत काल तक होता है, तो ये अंतर्मूर्त वाला ध्यान नहीं होता है? और एकाग्र निरोध हो, सारी जगह से हटकर एक की जगह रोक दो, सब जगह से हटा लो, एक 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 माने भगवान आत्मा, उसको अग्र करके वहां उपयोग रोको, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोग एक से दिखाई देते हैं, तो ये जो ध्यान की परिभाषा है ये नहीं होता, शुद्ध उपयोग है वो भी नहीं होता। नहीं होता क्या मतलब है? मतलब जो हमने अभी तक जो परिभाषाएं गुणस्थान परिपाटी से नीचे से समझते आए हैं, शुभ उपयोग के विरुद्ध शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग के विरुद्ध शुद्ध उपयोग, वो नहीं। वो वास्तव में वो सर्वोत्कृष्ट दशा है ना। मुख मग्गो मग्गो मोख उपायो, और मार्ग मोक्ष का उपाय है, और तत्फलम उसका फल मोक्ष है। ठीक है ना। तो अब वो मोक्ष मार्ग में जो जो बातें बताई, तो मार्ग खत्म हो गया, अब मोक्ष हो गया, तो मोक्ष में नहीं होता वैसे कह देंगे। अब जो मार्ग में आत्मा है तो मोक्ष में आत्मा भी नहीं रहेगा क्या? कि मार्ग में मान लो खाना नहीं होता तो मोक्ष में जाके खाएंगे क्या? तो कहेंगे मोक्ष में भोजन का त्याग होता है कि नहीं होता है? तो देखेंगे नहीं होता है, क्योंकि भोजन ही नहीं होता है। अब उसको त्याग होता है ऐसा कह दो, पता है नहीं होता है, लेकिन स्थिति तो वो है। तो ऐसी बहुत चीजों का निषेध होता है। और हम कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी है, मोक्ष में ध्यान का मैंने लिखा सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों आत्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण मोक्ष में भी रहेंगे, तो उनकी जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल दशा अवस्थाएं हैं वो मोक्ष में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो अब हम कह देंगे कि नहीं, मोक्ष मार्ग का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे मोक्ष मार्ग में तो जिनमें मोक्ष मार्ग में वर्णन किया था तो वो नहीं होती, ऐसे अर्थ में वो बात कहां कही जाती है? अब अभ्यास निकाल निकाल के लाके खड़ा करते हैं कि जैसे हमने सिद्ध किया धर्म के दर्शन में, तुम आश्रम का सुन रहे थे ना आज, तो जैसे ही धर्म मोक्ष में है कि नहीं है, तो वही समस्या। अब उत्तम क्षमा मोक्ष में है कि नहीं, कि कहाँ है? उन्हें कोई गाली ही नहीं देता, उन्हें गुस्सा नहीं आना, गाली सुन मैंने खेद आने तो उत्तम क्षमा हो, गाली सुन मन खेद न आने क्यों? अरे तो तुम्हारी भी परिभाषा है भाई साहब, ये तुम्हारी परिणति को देखने के लिए बहुत स्थूल तरीके से कहा है। जब आत्मा के जो गुण हैं और उसकी निर्मल पर्याय हैं, तो वे होगी कि नहीं, चार गुण की सब पर्याय हैं, तो चार गुण की निर्मल दशा मोक्ष में होगी कि नहीं होगी। इसलिए उसे उपदेश है किनको, चौथे से बारहवें तक वाले को, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए और ज्ञान को ही जानना चाहिए। अब देखना जानना अलग कर दिया तो ध्यान करना ये चार द्रुवी पर जा रहेगी, अलग नहीं करते तो तीनों को एक ही कह देते हम। ज्ञान कहते हैं इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है, कल बोला था साक्षात ज्ञानी मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं लगता उसके, और सब प्रकार से निराशर है। अब ये पूर्णतः निराशर, अब ये भी सर्व प्रकार ऐसा ही है कि सांप्रदायिक आश्रव माने सर्व प्रकार से, ईर्ष्यापद आश्रव यहां भी होता है ना, क्या समझे ना, सर्व प्रकार से लिखा ना, अब फिर गला पकड़ दो तुम, लेकिन ईर्ष्यापद आश्रव को आश्रव ही नहीं हम गिनते हैं क्योंकि बंध नहीं हुआ है ना। जब तक छायोपस में ज्ञान है तब तक अबुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक का अर्थ चारित्र मोहिका लिखा ना, राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा है। अब बुद्धिपूर्वक माने वो मिथ्यात्व वाला, अबुद्धिपूर्वक माने चारित्र मोह वाला, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवपना कहा है, यह विवक्षा की विचित्रता है, अपेक्षा समझने पर सर्वकथन यथार्थ है। अब देखो तुम्हारा तीसरा तो गायब ही हो गया, हम कौन सा था तीसरा, हम सोच समझ के करें वो बुद्धिपूर्वक, और बिना सोचे समझे हो जाए वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, न वो नहीं, न कलस्टी का कार मान रहे, न जतन छावड़ा मान रहे, हम तो वही मान रहे, हम तो बुद्धिपूर्वक नहीं करें, हम बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे, सोचो गंभीरता से, यदि आज तक हमारे बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक समझने में कोई गलती रही हो तो सुधार लो, आज बस खत्म, इतनी तो बात कर रहे ध्यान आकर्षित करने के लिए। इस गाथा में और उसकी टीका का भाव खोलते स्वामी जी ने यही बात खोली है, पढ़ लेना शांति से, अभी मुझे बहुत बातें बतानी है यहां पर। अब निकालो आप पेज नंबर 44, अब प्रश्न है ना नीचे, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग में क्या अंतर है, मतलब ये बार बार शब्द आएंगे और आप सही अर्थ नहीं समझेंगे उसका, विभिन्न अपेक्षाओं से आएंगे वो अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये। पांडे राजमल जी कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते हुए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार करते हैं, अब ये कलश टीका वाला अर्थ है, यानी ये ग्रंथ वो हैं जिनको अपने पूज्य गुरुदेव श्री बिल्कुल पूरा प्रमाणिक मानते थे, कि बहुत राजमल जी के वे बहुत भगत थे, बनारसी दास के भगत थे, जयचंद छावड़ा के भी थे। अब दोनों में जो अंतर है, अब दोनों के भगत एक साथ बने रहा जा सकता है, यानी किसी को एक को गाली देना कोई जरूरी थोड़ी है, हम दोनों का अंतर, नए चक्र में हमने क्या किया कि वो पंचाध्यायी के नए अलग से लिख दिए पूरा चैप्टर, इनका नए अलग लिख दिए, दोनों का अंतर बता दिया क्या, और हाँ कोई मार्गदर्शन हमको आवश्यक लगा तो बीच में दो पंक्तियों चार पंक्तियों में वो भी बात कह दी बहुत सभ्यतापूर्वक, यही मर्यादा है, यही तरीका है। बाबा से इस प्रकार है, अब ये भाषा उस वक्त की ऐसी थी, जो मूल भाषा थी वो तो अपने पास सामने ही है ही नहीं, ये तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने गुरुदेव श्री के कहने पर उसे जितना संभव हुआ वो खड़ी बोली में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा ऐसी है कि यदि उसे सीधी खड़ी बोली में कन्वर्ट करो तो भाव बदल जाने का डर बहुत है, इसलिए उन्हें बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया गुरुदेव की तरफ से कि भले ही ये भाषा सीधी ना हो पाए तो ना हो पाए, लेकिन भाव किसी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। और उन्होंने फिर उसको पूरा पढ़ा गुरुदेव ने, की पूरी कमेटी ने बैठ करके उनकी किचन कैबिनेट में, जिसमें रामजी भाई, श्यामचंद भाई, पंडित हिम्मत भाई, जो लोग वहां विद्वान रहते थे वो सब बैठते थे दोपहर में 1:30 बजे। हम लोग जाते थे तो हम लोग भी बैठते थे और उस पर वहां ऐसा चीजें पढ़ी जाती थी। और वो जो कोष्टक लगाए ना बीच बीच में, वो सब उसी किचन कैबिनेट में लगाए थे हमें उसको स्पष्टीकरण करने के लिए। मिथ्यात् राग देश रूप हैं जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम। अब मिथ्यात् राग देश तीनों ले लिया ना, राग देश माने अनंतानंदी के राग देश, वे दो प्रकार के हैं। अब उन्हीं में दो प्रकार कर दीजिए, मिथ्यात् राग देश में है ना, एक परिणाम बुद्धिपूर्वक और एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक। अब विवरण, विवरण माने वो संस्कृत का तथाई, बताया था क्या तथाई न्याय शास्त्र में आता है। इनकी ये स्टाइल ये है कि उनने दो भेद बता दिए उसके, एक बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, उसका वो विवरण माने उसी बात को अब विशेष खोल रहे। वो बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मन के द्वारा प्रवर्तते हैं, बाह्य विषय के आधार से प्रवर्तते हैं, प्रवर्तते हुए जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। इस पर गुरुदेव ज्यादा वजन देते हैं, वो खुद के ज्ञान के किए बनते हैं, आप भी जानता है लगाना। तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है कि आपके ऐसे परिणाम चल रहे हैं। सो इस जीव के ऐसा परिणाम है, ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। इनकी परिभाषा ये है, खुद जाने दूसरे के पकड़ में आए, हसने जैसे अब हम गालियां बक रहे तो हमें भी पता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को भी पता है कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। अब इसलिए हम कहेंगे बुद्धिपूर्वक वाला गुस्सा है ये, है ना। और सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मैच सकता है। अब वो सम्यक दृष्टि कहते अभी अब गुस्सा छोड़ो, तो सम्यक दृष्टि कहते हाँ शांत रहे, शांत हो गए, ऐसा माने वो प्रयत्न पूर्वक उसे मैच सकता है, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक बोलते हैं। क्योंकि परिणाम जीव की जानकारी में है, यदि पता ही नहीं होता उसे अंदर का तो बेचारे क्या मैटता। और बहुत मैट सकता है माने उसकी जानकारी, क्रमबद्ध पर्याय को तोड़ करके मैट सकता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। माने वो उसकी जानकारी में है तो उसके लिए वो प्रयत्न कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है माने जो भी विधि शास्त्र में है वो उनका प्रयोग कर सकता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है। फिर कहते कैसे कर सकता है, क्या सहारा है, हम कैसे करें, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, ये सहारा है। तो सहारा माने दूसरा, सहारा माने दूसरा नहीं, क्या मार्ग है, कैसे करें हम गुस्सा को कम, कि मुंह में पानी भर लो, सांस को जवाब मत दो, क्यों ये उपाय नहीं है लगाना। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है, माने यदि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे इसके बल पे वो हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मेटता है, वो कोशिश करता है कि मैं मेटूं आत्मा के आश्रय से। अबुद्धिपूर्वक परिणाम कहने पर 5 इंद्रिय और मन के व्यापार के बिना, आप देखो मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग देश रूप अशुद्ध विभाव परिणाम आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है, समझे ना। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है और जीव के सहारा भी नहीं है। अब जो जानकारी में नहीं तो उसको मेटने का क्या उपाय है उसके पास, इसलिए किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। अतएव ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। अब अपने अंदाज से कोई अंदर होगा तो निकल जाएगा, है ना, है वो निकालने की बात नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिटेगा, दूसरा उपाय तो कोई है नहीं, इसलिए एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाय है। ऊपर भी वही अनुभव ही उपाय बताया था, नीचे भी वही बताया, वो बुद्धिपूर्वक करता है। जो अबुद्धिपूर्वक मन हम उसे जानते नहीं है, देखो इस कुर्ते पे तो मैं लग गया और हमें दिख रहा है कि ये धब्बा लगे हुए हैं, तो हमने इसके लिए धोने के लिए स्पेशल साबुन कोई आता होगा मैं जानता नहीं हूँ, वो पाउडर माउडर लगा करके इसे धोया है ना। अब ये कैसा है, हमारे जो अंतर वस्त्र होते हैं ना उनको हम रोज ही नहीं धोते हैं, चड्डी बनियान ये है, ऐसा नहीं कि जब मेला दिखेगा तब धोएंगे, लेकिन वो तो मेले नहीं दिखे तो भी डालते हैं ना, लगा होगा वो धुल जाएगा, कि नहीं लगा होगा तो नहीं धुलेगा, तुम तो धोने में डाल दो। मैंने वो ये कैसा है कि तुम तो आत्मा का अनुभव करो और बुद्धिपूर्वक का राग मिट जाएगा, हो जाएगा मिटेगा मिट जाएगा, इतना जितना जैसा मिटना होगा। और एक 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 स्पेशल है, अब अपने अपने समझाते कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब मन को रोकता है, विचार करके भी रोकने की कोशिश करता है ना। अब आप जो अबुद्धिपूर्वक होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, आप उसे तो गुस्सा ही नहीं मानते, कोई न क्रोध मानते न मान मानते, आप जानते हैं अनादिकाल से जीव को 25 कसाएं हैं, अरे निगोदिया जीव के 23 कसाएं हैं। 25 कसाएं तो जानते हो कौन कौन होती है, बोलो कौन कौन सी होती है जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 2 मिनट में आ रहे, 16 प्रकार की अनंतानवंदी प्रत्यक्षण प्रत्याख्यान क्रोध मान माया 16 नोनो कसाएं 25 हो गई। अब निगोदिया के 2 कौन नहीं होगी, निगोद में जाना अच्छा, कम से कम 2 कसाएं से तो बचेंगे, कम कौन सी नहीं होती बोलो, नहीं मालूम। वास्तव में जो कसाएं उसके नहीं होती उनको हम कसाएं समझते नहीं ना, भले ही हमने 25 पढ़ ली और गिना भी दोगे तुम, लेकिन वहां उस पर अपन नपुंसक वेदी होते ना ये सब, तो उसे स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होती, आप समझिए ना। ये तो कसाएं नहीं, 23 उसके होती हैं, अब उसको कहां गुस्सा करते देखते हैं, पेड़ अभी पेड़ के 23 कसाएं हैं, ये कहां गुस्सा होता तुम्हें दिखाई दे रहा है, कहां अभिमान दिखाई देता है, कहां मायाचार दिखाई देता है, इसके कहां इसके लोभ दिखाई देता है, हास कहां दिखाई देता है, रति रति कुछ नहीं दिखाई देता। शास्त्र कहते हैं कि है 23 कसाएं और 24 घंटा उदय होने का मतलब ही उदय रूप है, सत्ता में पड़ी को होना थोड़ी बोलते हैं। तो हम सबके भी मान लो सम्मान दर्शन नहीं हुआ है तो 25 ही है, हम 25 हमारा असंतुलन क्यों होगी, हम तो अनंतानुबंधी वाले। अरे भाई असंतुलन भी है अनंतानुबंधी भी है, क्यों कि अनंतानुबंधी ने सम्यक्त को रोका है, स्वरूपाचरण को रोका है, तो किसने वो कौन सी क्या लास्ट में संजुलन, तो संजुलन ने यथाख्यात चारित्र रोका है, तो तुम्हें यदि वो नहीं होती तो ऐसा ख्यात हो जाता, वो यही तो झगड़ा हुआ था ऐसा, वो जो कल्पना बहन ये कहती थी कि असम्मान दर्शन नहीं हुआ और फिर आपने अनुव्रत ले लिए तो अनंतानुबंधी का साय नहीं गई और मस्मत्था तो नहीं गया, लेकिन अप्रत्याखाना बन चली गई, इसलिए हो गया क्या। संयम होता कैसे, संयम हो गया, अरे भाई नियम है कि अनंतानुबंधी जाए बिना प्रत्याख्याना बन जाते ही नहीं, वो तो उसका मंद होता है, तीव्रता नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब मंद भी सदा तो रहता ही नहीं ना, हर अंतर मुझे तो तीव्र से मंद, मंद से तीव्र होता ही रहता है। एक कसाय पावर में एक समुपत्तिक कसाय आती है, बहुत पहले वो अपन रतनलाल जी थे ना कोटा वाले, उनने बताई थी मुझे, स्वाध्याय करते थे धबला का, के द्रिवलंगी मुनि है ना जो 9वें गृह दीपक जाते हैं उनकी बात करता हूँ, सम्मा दर्शन है नहीं और मुनि है, रंच मात्र भी दूषण लगता नहीं है, इतनी तीव्र कसाय कितने खाल खींच करके नमक मिर्च भरे तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो श्रीमद की भाषा में, और चक्रवर्ती नमस्कार करे तो अभिमान नहीं आए, ऐसी कसाय हो जाए तो ऐसे द्रिवलंगी मुनि इतना कठोर आचरण कैसे पालन कर लेता है, ऐसा हरे को डर लगता है, क्योंकि मुनि धर्म जैन दर्शन का बहुत कठोर है, वो आत्मा 3 कसाई के अभाव बिना उसे पालना संभव नहीं है भाई साहब, पर यहां तो एक भी कसाई का अभाव नहीं है चारों ही, तो उन्होंने कहा कसाई के उदय से पाल लेता, तीव्र कसाई का उदय चाहिए, जिसे आप महामंद समझ रहे वो महातीव्र है, वो भूख लगे तो रोजी खाना रोजाना एक सहज प्रवृत्ति है, वो भी कसा है, अकसा है तो नहीं है ना। लेकिन 10 दिन का उपवास ठोकना कम से कम ये बात मनवाने के लिए कि लोकपाल बिल पास कर दो, वो बिना तीव्र कसाय के नहीं चल सकता, तो मंद कसाय में नहीं चलेगा, दुनिया को तो मंद दिखेगी, चल में ही ना। ये कोई बड़ी बात नहीं समझना, बहुत साधारण बातें हैं। अपने घर में रोजी ना होती बहुएं करती है ना, ये अनशन तो रोजी ना चलते ना अपने, जो अपनी बात नहीं मानी फिर बात तो खाना छोड़ देते हैं, तो सास मनाती है ससुर मनाते हैं यहां मन आते हैं, हम अपनी बात मान लेते हैं, अपने खा लेते हैं। क्यों तुम भी यहां आए हो ना, हमें जाना है पढ़ने के लिए, टूर्नामेंट स्मारक होने के, नहीं तुम्हें हम की आदत में नहीं जाने देंगे, 2 दिन रोटी नहीं खाते, 3 दिन झक मार के तुम्हारे माँ बाप भेज देते। ये तो हिंदुस्तान का बहुत पुराना हथियार है, है? वो तो ये अनशन उपवास है, ये तो हथियार भी है, ख्याल नहीं ना। अब वो धर्म भी है, अब कब वो धर्म है और कब हथियार है, अब ये कब कह सकते हैं, कब धर्म है और कब धर्म है। आमरण, आमरण का मतलब क्या हुआ, आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने हम लोगों पर ये आरोप लगाया था, जैनियों की जो समाधि मरण है ना, सल देखना संथारा, ये नहीं कर सकते, ये आत्महत्या है, ये क्या है। आप क्लियर कह रहे हैं कि हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे, और हम आमरण अभ्यास करेंगे तो ये तो बिल्कुल अपराध है। यदि आप हमें बैठ जाऊं हम सीधे उस पर मुकदमा चलेगा और उसकी 10-20 साल की सजा होगी कानून में, पढ़ के देखो कानून को, आपको आत्महत्या की सजा है कि नहीं है। मैं जहर खा के मरूं और पकड़ा जाऊं नहीं मर पाऊं तो केस चलता कि नहीं चलता है, क्या वो प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाए। इधर दंगे की चोट कह रहे हैं ना सारी दुनिया में, इतने तो गवाह हैं, जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक मैं करूंगा। बहुत अच्छा लगता है अपन को, बहुत अच्छा है यदि ऐसा लोकपाल बल पास हो जाए, भ्रष्टाचार हट जाए, अपन भी बहुत खुश हैं। लेकिन अब ये हथियार कामयाब हो जाए तो कल आदमी ये कहेगा मैं तो उपवास करता हूँ, हाँ मैं उपवास करता हूँ, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे से करो। वो लड़की नहीं चाहती, चाह नहीं चाहती, लड़की मैं आमरण उपवास करता हूँ तो क्या होगा बोलो, फिर गवर्नमेंट सब आएंगे मनाएंगे, लड़की को मनाएंगे, तुम कर ले बेटा, क्यों क्या उसे जेल में डालेंगे, क्या करना चाहिए। गलत मत समझना, राजनीति राजनीति की जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी हम यदि इस हथियार से बाध्य कर सकते हैं तो बाध्यता तुम किस बात के लिए कर रहे हो, क्यों इसका निर्णय कौन करेगा कि इस काम के लिए बाध्य कर सकते हो, इस काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। देखो मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि फिर वह लोकसभा क्या करेगी, फिर वो कानून बना सकती है, वो बनाएगी, वो सारा नियम बना है कि वो बनाए पहले गवर्नमेंट कानून मंत्री, फिर वो कैबिनेट में रखे, फिर वो पास करे, फिर लोकसभा में रखा जाए, फिर राज्यसभा में रखा जाए, फिर 2/3 बहुमत से पास हो और फिर कमेटी बनाए सरदगी उसमें रखा जाए। ये सारी प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है, वो काय के लिए बनाई गई है, अपन तुम नहीं बनाओगे हम बनाएंगे। अपन बैठ के अच्छा तो अपने लिए वही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्यों अब उसे खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं पूछता हूं सारी प्रक्रिया संविधान में लिखी है ना, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा, क्या उल्लंघन हो रहा संविधान का, वो कहते हैं हमने बनाया है हम पेश करेंगे पास होगी। अब आप कहो सब लोकसभा के सदस्यों से पार्टियों से कि वो वोट नहीं देंगे, नहीं होंगे पास, लेकिन हम बनाए और वो तुम पेश करो, लेकिन हमें वो हमें पसंद ही नहीं है ना, तो इसको मतलब हम वोट देने को बाध्य कर रहे हैं, हमको पेश करने को भी बाध्य कैसे कर सकते हो आप। ये टीवी पे जाएगा मैं जानता हूं, क्या मुझे क्या डर है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं भी अनशन करूंगा। इस बात पे भी तो हम अनशन कर सकते हैं कि तुम ध्यान मानो, टोटल मार्ग मानो, ध्यान की क्लासें चलाओ और वो एकदम ऐसा अपनी नाक को दिखवाओ, उन्हीं तरह हम अनशन कर दें, क्या हो सकता ना? और हम भी क्या कह रहे हैं, हम अनशन करते हैं कि तुम इनको ध्यान बंद करो, नहीं बंद करोगे तो हम अनशन कर दें। आजादी क्या है? आजादी तो एक जो जो चाहे वो करे, ख्याल में है ना, वो आप जो बहुमत से पास होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप अपनाओ और उस तरीके से उसे पास करो। एक कह रहे हैं न्यायालय क्या करे, कोई किसने क्या करेगा, न्यायालय तो कानून के अनुसार ही तो बोलेगा ना। बस आप देखे जबरदस्ती मत करो, इनको ज्यादा मत करो जबरदस्ती, ऐसा मत ले जाओ, डंडा मत मारो, ये तो कह सकता है, वो तो वो अलग बात है। लेकिन जो वो संविधान में संशोधन करो, यदि वो ऐसी बात नहीं है तो संविधान में संशोधन करो। आज मान लो कि तुमने अपने मन का बिल पेश कर दिया और फिर तुम हर पार्टी से कहोगे कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, तुम करो तुम सब लोग इसे पक्ष में दो, सर्वसम्मति से पास करो, और नहीं हम मरते हैं तो क्या करोगे, बोलिए। अब उसे मान लो जनता उसके साथ क्या करे, तो फिर मतलब जो ऐसा कहीं से भी भीड़ इकट्ठी करके और हम ऐसे मतलब सारे देश की जनता हो जाए तो भी क्या होना चाहिए, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री यही तो कह रहा है बेचारा, क्या कह रहा है कि मेरे हाथ में क्या है, ये तो 700 आदमी जो तुमने चुन के भेजे ये पास करेंगे तो होगा, नहीं होगा, वे सारे अपॉइंटमेंट ले आवे, वे 700 आदमी ये कहेंगे नहीं इसमें ये शामिल करो तो हम पास करेंगे, एक शामिल करो तो हम पास करेंगे, और सात चीजें शामिल करवा के और पास कर दें, तो पेश कर दिया उसे क्या होता है, हमने बना करके उसमें अमेंडमेंट करने की तो अधिकार सारे लोकसभा को है कि नहीं है, और तुम जब लोग करोगे तो हम पास करेंगे। आप अपील करो सबसे, कहते इस बिल को आप पास मत करो गवर्नमेंट वाले को। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर चीज को हमें तत्व को बात समझनी पड़ेगी, ये जबरदस्ती वाला मामला जैन दशा में नहीं है, वो हमारा तो बिल्कुल काया और कसाय, तो हम अन्न छोड़ते हैं तो पहले कसाय छोड़ते हैं, है ना, हम दूसरे के लिए कुछ करने के तब हमारी समाधि मरण होता है कि नहीं होता है, है? उस समाधि मरण पर तो जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, भैया अभी एक समय खत्म हो जाएगा अपना, कहां पढ़ रहे थे अपन, और दूसरा जानपना बंद का कारण नहीं है, दूसरा जानपना जो कितनी ही विषय वस्तु का जानपना भी है और मूल कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, यही है कि कुछ नहीं बदल गए अपन कहीं, चला अब आगे बढ़ो, बहुत पेज बदल गए बहुत है, कौन सा पेज चल रहा था, अभी 44 45 था, हाँ अनुभव उपाय है, यहां तक हो गया था। अब ये ज्ञायक संबंध दो प्रकार का है, एक तो जानपना मात्र, बस पर हमने उसे सिर्फ जाना है और कुछ नहीं, राग देश रूप नहीं, जैसे केवली भगवान सकल गेय वस्तु को देखते जानते हैं परंतु किसी वस्तु में राग देश नहीं करते, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा जाता है, सो सम्य दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, इसलिए मोक्ष का कारण है बंध का कारण नहीं। मोक्ष में होता है अकेला जान और कुछ नहीं, सिर्फ जानना, तो सिर्फ जानना सम्य दृष्टि जीव के ऐसा होता है तो वो मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है, ज्ञान तो बंध का कारण होता ही नहीं है। अभी समस्या तो ये है ना कि ज्ञान को बंध का कारण कह रहे, ज्ञान गुण को, वहां समस्या वहां से खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कह दिया वो जघन्य परिणमन, और जघन्य परिणमन के साथ में राग गारंटी से होता है, और राग तो बंद का कारण है, उसकी अपेक्षा कहा था। तो सम्यक दृष्टि के कहते ऐसा भी होता है, और उसी जघन्य प्राणायाम में ऐसा भी होता है कि राग द्वेष बिल्कुल ना हो, क्योंकि जान पना तो हो गई ना, हर जानने के साथ में राग द्वेष चेता ही रहेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। वो अपने आत्मा को जानेगा तो उसमें कहां से राग द्वेष आ जाएगा। और दूसरा जान पना ऐसा है जो ये तो वो तो सहज बताया वो है ना धर्म रूप, कि कितने ही विषय वस्तु का जान पना भी है और मूल कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, भोग की भी अभिलाषा करता है और अनिष्ट में द्वेष करता है, अरुचि करता है। तो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ है जो ज्ञान, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहा जाता है। इसलिए बंध का कारण है। ऐसा प्रणमन सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि मिथ्यात् रूप परिणाम गया होने से ऐसा प्रणमन नहीं होता। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है। अब ये समझ लो, थोड़ी सी तीन तरह की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इनका सीधा सच्चा सरल अर्थ तो ये है कि ज्ञान चेतना माने जानना, बस जानने में हमारी चेतनता लगी हुई है, उपयोग लगा है, और एक कर्म करने में उपयोग लगा है, और एक भोगने में उपयोग लगा। तो करने में उपयोग को बोलते हैं कर्म चेतना, और भोगने में जो उपयोग लगा है उसे बोलते हैं कर्म फल चेतना। अश्विनी पंचेंद्री तक तो मुख्य एकता कर्म फल चेतना होती है, उन्हें कुछ करने की भाव नहीं होते, न जानने का होता है, बस उनको तो भूख करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, वो कर्म के फल को भोग, तो जो कर्म का जो फल आता है उसको भोगते हैं, तकलीफ होती है तकलीफ भोगते हैं, सुख होता है अनुकूलता होती है अनुकूलता भोगते हैं, खाते हैं तो खा लेते हैं वो भोग लेते हैं, नहीं खाते हैं तो भूख को भोगते हैं। कर्म पंच चेतना की प्रधानता है। और फिर जब स्वयं पंचेंद्री होता है और ज्यादा करते तो बुद्धि वाले हो जाते हैं ना, नेता हो जाते हैं, घर वाली महिलाएं हो जाती हैं, मैंने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उन्हें कर्म फल चेतना की अपेक्षा कम होती है, खाने में उतना मजा नहीं आता, खिलाने में मजा आता, बना करके खिलाने में, है ना, ये बढ़िया व्यवस्था करना, प्रथम स्पीकर बढ़िया होना, प्रथमकार बढ़िया बुला लेना, सारी जनता को बढ़िया बैठा देना, कुछ व्यवस्था को भी इसमें बहुत रस है। जब प्रथम शुरू होगा तो फिर जाके आराम करेंगे, प्रथम सुनने में कोई रस नहीं है, सब अप टू डेट रहना चाहिए, उसमें रस है। और कई ऐसे हैं कि तुम्हारी जो हो सो हो जाए भैया, हमें तो शांति से बैठ के सुने, स्पीकर खराब हो तो हम जरा पास में बैठ के सुन लेंगे, सिर्फ उसको समझिए ना, फल में रस है, फिर करने में रस है। अब वो कहते हैं मिथ्यात्व पूर्वक यदि वो करने और भोगने का रस है तो उसका नाम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। करते तो भोगते तो बुद्धि पूर्वक, यदि करते तो भक्ति पूर्वक नहीं है और भोगने का भाव भी होता है और करने का भी होता है तो भी उसका नाम ज्ञान चेतना ही है। इसमें लिखा एक समय सार के अंत में बहुत विस्तार से है ये बात। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है, आत्मानुभव से होता है, अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभव है, आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। अब आगामी चार गाथाओं में कलश रूप काव्य लिखते हैं वो इस प्रकार जो अब ये जो आएगा ये अगली गाथाओं की भूमिका का है। ये जो अपन ने पढ़ा है ना अभी 47 पर, तो ये कल अपन ने बनारसी दास का छंद पढ़ा था, इसमें जो ये बातें लिखी हैं वो सब इसमें आ गई हैं। बनारसी दास एक एक शब्द को उसकी नकल करते हैं कलश टीका की, कि देते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक ती परिणामन की ममता हरतु है, मनसो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव तिनके विनाश वेघो उद्यम धरतु है, यही भांति पर नति को पतन करे मोक्ष को जतन करे भोजल तरतु है, ऐसे ज्ञान बंत के निराश्रव कहावे सदा और जिन्हीं को सुयस सुवेक्षण करत है। ऐसा समझ लो कि अपने दो तरह की दवाइयां खाते हैं, एक तो जो कोई अपनी बीमारी हो गई तो उसके लिए जो स्पेशल दवाई है, जैसे अभी इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स है जो भी, वो अपन बीमारी को दूर करने के लिए खाते हैं। और कुछ दवाइयां वो कह रहे ये तो साहब 12 महीने आप खाया करे अच्छा रहता है, इसे टॉनिक बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं ना, अब कोई तकलीफ के दूर करने के लिए नहीं, मगर जनरल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो एक तो वो कहते हैं इसमें गुस्सा आ गया, तो उस गुस्सा करने के लिए आप अपने मन को समझाते हैं, तो वो समझाते हैं भाई अपने आत्मा का स्पर्श करो कि कौन जीता कौन हारा। अरे भाई तुम चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन मनुष्य भव को हार रहे हो तुम, कितनी समय कितनी कीमती है ये, एक एक क्षण में हमारे पास कितना सा समय है, मतलब 2-4 साल की जिंदगी है, और उसमें हमने किसी की लौकिक प्रकरण में हार गए कि जीत गए क्यों, लेकिन दोनों में हमारा मनुष्य भव के समय तो हम हारे ही गए क्या। यदि सचमुच तेरी जीत है तो इसमें है कि उन परिस्थितियों में तू अपने उस समय को बचाकर और अपना तत्व अभ्यास में निर्माणी की सेवा में लगाए रख सके, तो समझना तेरी जीत ही जीत है, हार। और यदि तूने जीत भी लिया और ये तेरा समय बर्बाद हो गया, तो समझ लेना कि तू हार ही हार है, तू मनुष्य हो तो हार गया ना तू। अब ये इतना कीमती समय, इसकी क्या कीमत तुम कुछ चुका सकता है, करोड़न की एक एक घड़ी है बोलते ना है? वकील का 2 लाख रुपए का एक घंटा मुद्दा अदालत में खड़े होकर बोलने का, वो कहने को 2 लाख रुपए का घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे में 2 लाख रुपए घंटा नहीं मिलते उसे, वो 2 लाख रुपए घंटा महीना 15 दिन में 1-2 दिन आता है, चाहे उसे तो मासिक इनकम 4 लाख कह लो चाहे घंटे की कह लो। काम जी भाई 200 रुपया उस जमाने में लेते थे 1 घंटे का, क्यों मतलब ऐसा ही है, 2 घंटा कब आता है। तो ऐसा लेकिन तेरे मनुष्य भव का एक अंतर मुहूर्त में उपयोग अंदर चला जाए तो केवल ज्ञान होता है ना। अब तुम अपने मनुष्य भव की एक एक समय की कीमत लगा, तो करोड़ों की एक एक घड़ी हमको बहुत अटपटा लगता है, करोड़ों की कैसे घड़ी हो गई, ये मूर्खनाथ की करोड़ों की घड़ी है क्या, जैसे लगाने पड़ेगा, वो घड़ी है ना कीमती, वो करोड़ों में मिल सकती हो तो बताओ है? ये आंख कितने की है छापरा जी, इसके 2 तरह से कीमत लग सकती है, कि एक तो हम इसे बेचने जाए तो बाजार में कितनी कीमत मिलेगी, और एक हम इसे खरीदने जाए तो कितने में मिलेगी। फिर बेचने की कीमत अलग है और खरीदने की कीमत अलग है, कि बेचने जाए तो कोई को 1000 रुपए में नहीं ले, नहीं है उसे जरूरत, 2 आंखें उसकी बढ़िया है क्यों है? खरीदने जाए तो कोई आदमी खाने को घर में नहीं हो, 1 करोड़ रुपया दो तो क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए क्यों, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो ये तेरा मनुष्य भव का जो ये समय है तेरे को कितने में मिल सकता है बताओ सारा दिन जी, करोड़ों में मिल सकता है ना, कि नहीं मिल सकता तो करोड़ों की एक घड़ी क्यों बोल रहे भाई साहब, ये तो अनंत में भी नहीं मिल सकता है, समझना कितना बेशकीमती समय हम जरा जरा सी चीजों में जीतने, शतरंज की बाजी जीतने में क्यों, ये क्रिकेट का मैच जीतने में है, पड़ोसी से प्रतियोगिता जीतने में लगा रहे हैं, लेकिन तेरा जो समय गया है वो तू कितनी बड़ी हार है हमें उसका ध्यान नहीं है। एक दफे हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए तो जगत की सारी जीतें बिल्कुल फीकी पड़ जाए, लड़ाई ही फीकी पड़ जाए, ख्याल नहीं ना और तो सब।